वेद ने शिवांशा को वादा किया था कि वो शाम को जल्द ही फ्री होकर आ जाएगा और शिवांशा के साथ टाइम स्पेंड करेगा, लेकिन तेजेंद्र की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। इमरजेंसी में वेद को अपना चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा और वहां उसे काफी टाइम लग गया था। रात के 12 बजे के करीब वेद घर पहुंचा। जैसे ही उसने कमरे की लाइट ऑन की तो उसने देखा कि शिवांशा बेड पर सिकुड़कर सोई हुई थी। उसने सबसे पहले रूम का टेम्परेचर हाई किया और फिर चेंज करने के लिए बाथरूम में चला गया। कुछ ही मिनटों में वो वापस लौटा और शिवांशा के पास जाकर बैठ गया। उसने शिवांशा के चेहरे को देखते हुए धीमी आवाज में कहा, मैंने फिर से तुम्हें डिसअपॉइंट कर दिया। ना जाने वो टाइम कब आएगा जब मुझे तुम्हारे लिए टाइम मिलेगा। बस तुम तब तक मुझसे इरिटेट होकर मुझे छोड़कर मत चली जाना। वेद बेड पर लेटा और उसने शिवांशा को अपनी बाहों में खींच लिया। वो नींद में थी, फिर भी वेद के एहसास को महसूस कर सकती थी। वेद के करीब आते ही शिवांशा ने उसे कस कर गले लगा लिया। अगली सुबह शिवांशा वेद से पहले उठ गई थी। इतने टाइम में मुश्किल से ये एक या दो बार ही हुआ होगा। उसे यही लग रहा था कि रात को वेद लेट आया होगा, इस वजह से सो रहा था, पर डॉक्टर ने उसे एक दिन के लिए आराम करने के लिए कहा था। वैसे भी अचानक शुगर लेवल स्पाइक होने और फिर मेडिसिन से डाउन होने के बाद उसे काफी थकान महसूस हो रही थी। आज तो चमत्कार हो गया, आप और अब तक सो रहे हैं। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ या फिर आप सोने का दिखावा कर रहे हो? शिवांशा ने आंखें छोटी करके कहा। वेद की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। शिवांशा ने उसके फोरहेड पर हाथ रखकर चेक किया कि कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है, लेकिन सब नॉर्मल नजर आ रहा था। पक्का कुछ घंटे पहले ही आए होंगे, कल शाम को कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। कोई बात नहीं, आज आप घर पर हो तो मैं भी कहीं नहीं जाने वाली। आज का दिन तो आपको मुझे देना ही होगा। शिवांशा ने खुद ही कॉलेज ना जाने का फैसला कर लिया था। वो तैयार होने के लिए उठी। वेद के कमरे में बालकनी नहीं बनी हुई थी, इसलिए वो खुली हवा में सांस लेने के लिए अपनी पसंदीदा जगह पर आ गई थी, जो उसके पुराने कमरे के पास बनी बालकनी थी। वहां आते ही शिवांशा खुशी से चहक पड़ी, क्योंकि बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी। आओ, कितना रोमांटिक वेदर है, लेकिन जिनके साथ रोमांस करना है वो तो सो रहे हैं, उन्हें तो पता भी नहीं कि बाहर बारिश हो रही है, शिवांशा ने मुंह बनाकर कहा। बारिश की बूंदों को महसूस करने के लिए उसने अपना हाथ बाहर की तरफ निकाला ही था कि तभी किसी ने उसे पीछे से कसकर हक कर लिया। शिवांशा का हाथ भी उसने अंदर की तरफ वापस खींच लिया था। वो उस एहसास को पहचानती थी। उसके पीछे वेद खड़ा हुआ था। तबीयत खराब हो जाएगी, वेद ने सख्त आवाज में कहा। आप इतने अनरोमांटिक कैसे हो सकते हो? शिवांशा ने अपना चेहरा वेद की तरफ कर लिया था। उसके दोनों हाथ वेद के कंधों पर थे तो वेद के दोनों हाथ उसकी कमर से लिपटे हुए थे। शिवांशा की बात सुनकर वेद ने आंखें घुमाई। और तुम इतनी चाइल्डिश कैसे हो सकती हो? यहाँ खड़े होकर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है जाकर रेडी हो जाओ, क्लासेस अटेंड करने जाना है, वेद ने उसे याद दिलाया। शिवांशा ने तुरंत नामी सिर हिला दिया। वो बोली, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। रात को आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करेंगे और रात को आप इतनी देर से आए कि आपका वेट करते हुए मैं सो गई। आपकी सजा ये है कि आज का पूरा दिन आपको मेरे साथ बिताना होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कॉलेज चलूंगा और आराम से कैंटीन में बैठकर तुम्हारी क्लास खत्म होने का वेट करूंगा, वेद ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर शिवांशा घूर कर उसकी तरफ देखने लगी। मैं एक दिन नहीं जाऊंगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी, और वैसे भी बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। थोड़ी देर पहले आपने मुझे कहा ना कि मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तो मुझे बाहर नहीं जाना। वैसे भी नवी दीदी की सगाई है, कुछ प्रेपरेशन नहीं किया हुआ है, मुझे तो ये तक नहीं पता कि मैं क्या पहनूंगी। कॉलेज जाने से बचने के लिए शिवांशा को जितने बहाने याद आ रहे थे उसने वेद के सामने सब एक साथ बना दिए थे। उसका चेहरा देख कर ही वेद को सब समझ आ रहा था। वो शिवांशा की बातें पूरे इंटरेस्ट के साथ सुन रहा था। जैसे ही शिवांशा की बात खत्म हुई वेद ने झट से कहा, तो मैडम को शॉपिंग पर जाना है, आज नव्यांशी आने वाली है, उसका आउटफिट भी डिसाइड करना है, वो डिजाइनर को बुलाने वाली है, तो जो भी बना हुआ होगा उसमें से डिसाइड कर लेना। मतलब बाहर नहीं जाना पड़ेगा? शिवांशा ने बौहें उठाकर पूछा। बिल्कुल नहीं, वेद ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। हाँ, लेकिन फिर भी सब डिसाइड करने में टाइम लगेगा, अगर बाहर चली गई तो फिर काम नहीं हो पाएगा। आपने ही कहा था कि मुझे आराध्या भाभी की हेल्प करनी है। मैं नवी दीदी की सगाई के बाद एक भी क्लास मिस नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। लेकिन सगाई तक घर पर रुकने दीजिए ना प्लीज, शिवांशा वेद की आंखों में देखते हुए मासूम सा चेहरा बनाकर बोली। उसके इस मासूम से चेहरे को देखकर वेद से ना कहते नहीं बना। उसने तुरंत हल्के से हाँ में सिर हिला दिया, जिस पर शिवांशा खुश होकर उसके सीने से लग गई। आप कितने अच्छे हो, शिवांशा ने चहकती आवाज में कहा।
वैसे ये सही है तुम्हारा। अगर किसी चीज के लिए मना करूं तो मैं बुरा हो जाता हूं, और तुम्हारी बात मानूं तो अच्छा। घर पर रुक रही हो इसका मतलब ये नहीं कि आराम करने को मिलेगा, काम करना पड़ेगा, वेद ने जवाब दिया। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ, आप बस ऑर्डर कीजिए। शिवांशा तुरंत ही अलग होकर अटेंशन पोजीशन में खड़ी हो गई थी। वेद ने उसके हाथ को पकड़ा और फिर उसे कमरे में ले जाने लगा। अंदर की तरफ जाते हुए वो बोला, ठीक है तो सबसे पहले मेरा पर्सनल स्टफ अरेंज करने में मेरी हेल्प करो। शिवांशा खुश थी कि किसी बहाने से ही सही, लेकिन उसे वेद के साथ टाइम बिताने का मौका मिल रहा था। दूसरी तरफ नव्यांशी अरमान और मनन के साथ उदयपुर पहुंच चुकी थी। रोहन को भी वो अपने साथ लेकर आई थी। अरमान ने सबसे पहले नव्यांशी और रोहन को चौहान पैलेस के आगे ड्रॉप किया। नव्यांशी गाड़ी से बाहर निकलने के बजाय अरमान की तरफ देख रही थी। ऐसे मत देखो, परसों एंगेजमेंट है और फिर जब चाहें तब हम शादी कर सकते हैं। हमारे रिश्ते को एक नाम मिल रहा है और तुम्हारा मुंह बना हुआ है, अरमान ने सिर हिलाकर कहा। उसने नव्यांशी को स्माइल करने का इशारा किया। मुझे तुम्हारे साथ रहना था, ये सब इतना जल्दी क्यों हो रहा है कि मैं खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ठीक से तैयारी तक करने का टाइम नहीं मिला। आई हेट योर फैमिली, नव्यांशी ने झुंझलाहट भरे स्वर में जवाब दिया। चलो कहीं तो हमारे ख्यालात मिले, जितना सोचोगी उतना परेशान रहोगी। इससे अच्छा है कि सोचने की बजाय इस लम्हे को एंजॉय करो। चलो अब अंदर जाओ, और तुम्हें मिस्टर चौहान को भी संभालना होगा। ये जो तुम जिद करके रोहन को अपने साथ लेकर आई हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे इस डिसीजन से वो खुश होंगे, अरमान ने कहा और फिर रोहन की तरफ देखा। रोहन के रहने का अरेंजमेंट अरमान ने अपने फ्रेंड के यहाँ पर किया था, लेकिन नव्यांशी जिद करके उसे अपने साथ लेकर आई थी। उसका यही मानना था कि रोहन चौहान फैमिली के साथ रहेगा तो राजावत फैमिली कुछ नहीं कर पाई थी। वैसे भी उसे उनकी खुशियों में शामिल होने का हक था। कोई बात नहीं, मैं भाई को संभाल लूंगी, भाभी भी रोहन से मिलकर बहुत खुश होंगी। उनकी खुशी के आगे तो वैसे भी भाई कुछ नहीं बोल पाएंगे, नव्यांशी ने बेपरवाही से जवाब दिया और वो रोहन के उतरने में मदद करने लगी। रोहन गाड़ी से बाहर निकल गया था जबकि मनन सो रहा था। नव्यांशी ने एक नज़र इधर उधर देखा और फिर सामान लेने के बहाने अपना सिर गाड़ी के अंदर डाला। उसने जल्दी से अरमान की गाल पर किस कर लिया। मिलते हैं वुड बी हस्बैंड, नव्यांशी ने मुस्कुराकर कहा। अरमान के फेस पर भी स्माइल थी। उसने हल्के से सिर हिलाया और नव्यांशी को बाय बोलकर गाड़ी राजावत हाउस की तरफ ले जाने को कह दिया।
आराध्या, वंश और अक्षत साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो वहीं शिवांशा और वेद ऊपर कमरे में थे। वेद ने बहुत सारा सामान फैला रखा था जो वो जानबूझकर शिवांशा से ही ठीक करवा रहा था। इस दौरान नव्यांशी अंदर गई। उसने रोहन की तरफ देखकर कहा, इसे अपना ही घर और फैमिली समझना, तुम्हें किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पूरी तरह सेफ हो। रोहन ने उसके बात पर हामी भरी। रोहन का हाथ पकड़कर उसे चलने में मदद करते हुए नव्यांशी उसे अंदर लेकर आ गई थी। अंदर आते ही उसने तेज आवाज में कहा, सरप्राइज। हर किसी का ध्यान नव्यांशी की तरफ चला गया था, लेकिन वे सरप्राइज नव्यांशी को देखकर नहीं बल्कि रोहन को देखकर हुए थे। ये कौन है, वंश ने आराध्या की तरफ देखकर धीरे से पूछा। डोंट टेल मी इस छोटी हिटलर ने बच्चा अडॉप्ट किया है, अक्षत आइज रोल करके बोला। इतना बड़ा बच्चा कौन अडॉप्ट करता है, आराध्या ने जवाब दिया। ये कुछ भी कर सकती हैं, आप जानते हैं ना, पागल है, अक्षत बोला। अब तो मैं भी इस बात से अग्री करता हूँ कि ये लड़की पागल है, अपने दुश्मनों से दिल लगा बैठी है, जबकि मुझे अच्छे से याद है कि सबसे ज्यादा यही लीला राजावत से चिढ़ती थी, वंश ने मुंह बनाकर कहा। वे सब नव्यांशी के पास आने के बजाय वहीं डाइनिंग टेबल पर उसे देखकर बातें कर रहे थे। ये देखकर नव्यांशी झुंझला गई थी। वो खुद ही रोहन के साथ वहां पहुंच गई। उसने उन सबकी तरफ घूर कर देखते हुए कहा, कैसी फैमिली हो आप लोग, मैं इतने दिनों बाद घर आई हूँ, ऊपर से मेरी सगाई होने वाली है, मेरा वेलकम करना तो दूर की बात है, आप लोग मेरे पास तक नहीं आए। नव्यांशी की बात को अनसुना करके वंश ने रोहन की तरफ देखकर पूछा, ये बच्चा कौन है? ओ ये तो शिवांशा भाभी का भाई है जो अरमान के साथ रहता था, मुझे लगा कि भाभी का भाई उनके साथ रहना चाहिए तो मैं इसे यहाँ ले आई, नव्यांशी ने मुस्कुराकर कहा। शिवांशा भाभी के भाई हैं और उन्होंने हमें इस बारे में बताया भी नहीं, क्या उनकी फैमिली में कोई और भी है, वंश बोला। नहीं, भाभी का उनके भाई के अलावा कोई नहीं है, पहले कोई नहीं था, अब हमारी पूरी फैमिली है। आप लोग बातें कीजिए, मैं रोहन को लेकर ऊपर जाती हूँ, नव्यांशी ने जवाब दिया और रोहन को अपने साथ चलने का इशारा किया। नव्यांशी पहले की तरह बिना किसी रोक टोक के वेद के कमरे में जा रही थी, जबकि अब स्थिति पूरी तरह बदल गई थी। उन्हें पूरा यकीन था कि हर बार की तरह शिवांशा कमरा बंद करना भूल गई होगी और नव्यांशी को कुछ ऐसा देखना पड़ेगा जिसके बाद उसे अचानक वेद के कमरे में जाने पर अफसोस होगा। लेकिन इस बार नव्यांशी अकेली नहीं थी, उसके साथ रोहन भी था। हमें इसे रोकना चाहिए, वे दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए भी नीचे नहीं आए, पक्का एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, आराध्या ने वंश और अक्षत की तरफ देखकर कहा। जाने दो, हम रोकेंगे तो उल्टा हमसे लड़ने लग जाएगी, मैं तो चाहता ही यही हूँ कि इसे भाई से डांट पड़े, अक्षत तिरछा मुस्कुराते हुए बोला। अक्षत ने अपनी शरारत के चलते नव्यांशी को रोका नहीं था। वहीं नव्यांशी काफी खुश होकर वेद और शिवांशा से मिलने गई थी। जैसा कि अक्षत को लगा था, कमरे का दरवाजा खुला था। जैसे ही नव्यांशी दरवाजे के पास आई, उसने जल्दी से रोहन की आंखों पर अपना हाथ रख दिया।
नव्यांशी ने भी अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया था और इस वक्त वो मन ही मन खुद को गलत वक्त पर आने के लिए कोस रही थी। पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।